हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 13, 14, 15 एंड 16। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उनका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुंभा यवनाखसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमो। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्याकाशिदुपासना व्रजवधू वर्गेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके
भक्तिरा भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 13। इस अध्याय का शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा। जब यहाँ तक सूत गोस्वामी ने बता दिया कि वास्तव में दिव्य ज्ञान के द्वारा जो है वो संसार के सारे आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है और केवल भगवान की भक्ति से ही जीव को आनंद प्राप्त होता है, तो ऐसा कौन होगा जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनना चाहेगा। इतना कहने के बाद जैसे ही सूत गोस्वामी ने विश्राम लिया थोड़ा सा, तो उसी समय शौनक आदि जो ऋषि थे वो अपनी जिज्ञासा को, अपनी उत्सुकता को बयान करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। और अब शौनक मुनि बहुत ही सुंदर रीति से सुखदेव गोस्वामी से याचना कर रहे हैं कि हम और भी श्रवण करना चाहते हैं उन कथाओं को जो कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो वार्ता हुई है उसको श्रवण करने की लालसा बढ़ रही है। क्योंकि जब एक शुद्ध भक्त और किसी दूसरे शुद्ध भक्त से मिलता है तो उनके दरमियान जो वार्तालाप होती है वो केवल और केवल भगवान के गुणगान ही होते हैं, तो उनको श्रवण करने में सबका कल्याण होता है। इसलिए आप कृपया हमें उन्हीं कथाओं को पुनः सुनाइए। तो वे कहते हैं श्लोक नंबर 13 में, शौनक उवाच इत्यभि व्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं मृषिं कविम्। इत्यभि व्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं मृषिं कविम्। इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासकिं ऋषिं कविम्। इत्यभिव्याहृतं राजा, इत्यभि शौनक मुनि जो है वो सूत गोस्वामी से कहते हैं जो कुछ भी अभी उन्होंने बताया, जो कुछ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो कुछ कहा अभी व्याहृतम, मतलब अभी इतना सब जो उन्होंने ज्ञान बताया किसको, राजा परीक्षित को, निशम्य भरतर्षभ, भरतर्षभ यानी महाराज परीक्षित महाराज ने जब ये सुना, जो कुछ उन्होंने कहा था उसको जब सुना, केमन्यत पृष्टवान भूयो, तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, पृष्ठवान मतलब उसके बाद उन्होंने क्या प्रश्न किया, भूयो, क्योंकि यहाँ पर ये वार्ता समाप्त तो नहीं हुई होगी। उन्होंने जब बताया है कि भगवान के विषय में श्रवण करने से ही जीव का कल्याण होगा और केवल श्रवण शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें सुनना चाहिए, और सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवान के लिए हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न हो और भगवान के भक्तों के संग से ही वो प्रेम उत्पन्न होता है, जब उन्होंने इतना स्पष्ट बता दिया कि कृष्ण कथा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो फिर किमन्यत पृष्टवान भूयो। फिर राजा परीक्षित ने और क्या पूछा, वयास किम ऋषिम कविम, क्योंकि वो जिसके साथ बैठे हुए थे वयास किम, वेद व्यासी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी वो महान ऋषि हैं, वो कवि हैं। कवि का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर ढंग से जो वर्णन कर सकता है, जो बहुत ज्यादा विद्वान है, और ऐसा ऋषि जो कि भगवान की कथाओं को बहुत ही सुंदर और मधुर तरीके से बता सकता है। जब ऐसा कोई भक्त किसी जिज्ञासु भक्त को मिल जाता है तो फिर तो उनके बीच में जो वार्तालाप होती है वो तो आगाढ़ प्रेम को बढ़ाने वाली है, हृदय के अंदर सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने वाली होती है। तो कृपा करके आप हमें ये बताइए कि जब इतना महाराजा परीक्षित को बताया तो किमन्यत पृष्टवान, फिर उन्होंने उनसे क्या पूछा, क्योंकि उनके सामने वेद व्यास जी के पुत्र जो कि शुकदेव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े कवि हैं, वो उनके सामने हैं, तो अवश्य उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान की कथाओं के विषय में उन्हें और बताया होगा, तो हम वो सब श्रवण करना चाहते हैं। अनुवाद, शौनक ने कहा, व्यास पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे, अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराजा परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में अत्यंत ही सुंदर बात बताते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनते हैं और भगवान की सेवा को प्रेम से करते हैं, वैसे तो कार्य नौकर भी करते हैं, सारे कार्य जो हमारे घर के होते हैं वो नौकर भी करते हैं, लेकिन नौकर जब कार्य करता है तो उसके बदले में उसे केवल जो उसका सैलरी होता है ना, उससे मतलब होता है, मालिक से उसका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त जब सेवा करता है उसमें एक भिन्न सेवक का भाव होता है, वो केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहता है। तो जब कोई जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करता है तो उसके रिजल्ट में क्या मिलता है, उसे सारे देवी गुण उसके अंदर विकसित होने लगते हैं, जो देवताओं के गुण है ना खुद ब खुद। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी 26 गुणों के बारे में बताते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके अंदर 26 क्वालिटीज खुद ब खुद आने लगती हैं, जैसे जैसे वो प्रेम और श्रद्धा के साथ सिर्फ और सिर्फ भक्ति करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान की कथाओं को श्रवण करता है, भगवान के की सेवा करता है, तो उसके अंदर सारे दैवी गुण आने लगते हैं। और यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी के एक गुण का जो अंतिम शब्द बताया गया है कविम, कविम का मतलब होता है जो बहुत ही विद्वान है और बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान की लीलाओं को बताने में सक्षम है। इस गुण के विषय में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की इच्छा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं, वह दयालु होते हैं। भगवान का भक्त सब पे कृपा करता है, उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती है, दया इतनी होती है कि उसकी इच्छा होती है कि सब लोग जो हैं वो भवबंधन से पार हो जाएं, वो कभी भी किसी के साथ शत्रुता नहीं करता, शांत होता है, भले कोई उसके साथ कैसा भी सुलूक करे तो वो भक्त जो होता है वो सदैव शांति के साथ श्रवण करता है, हाइपर नहीं होता हर किसी के ऊपर आपने मुझे ऐसा किया। यहाँ पर ये भक्तों के गुण बताए जा रहे हैं, अगर हमारे अंदर ये गुण आ रहे हैं ना तो हमें ये समझना चाहिए कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। लेकिन यदि ये सब गुण नहीं है ना, तो फिर ये समझना चाहिए कि कहीं ढोंग तो नहीं कर रहे हम। आगे लिखा सत्यवादी, झूठ भगवान के भक्त कभी भी नहीं बोलते हैं। कोई भी बात होती है तो वो सत्य और प्रेम मीठे शब्दों में बात, ऐसा नहीं। सत्य हमेशा कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बहुत कटु शब्द होते हैं, लेकिन वो प्रेम से मिठास के साथ शांति के साथ वो सत्य बोलते हैं। और समदृष्टि, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं वो, ऐसा नहीं है किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा। त्रुटि रहित, भगवान उनको इतना दक्ष बना देते हैं कि उनके कार्यों में कोई गलती नहीं होती है। उदार होते हैं सबके ऊपर। और मृदु, मृदु माना बहुत नरम दिल होते हैं, वो बहुत कोमल हृदय के होते हैं। स्वच्छ रहते हैं, हमेशा साफ सुथरे रहते हैं, हृदय से भी साफ और शरीर से भी साफ रहते हैं। अनासक्त, भौतिक वस्तुओं की ओर उनका कोई आकर्षण नहीं होता है। सर्व शुभैषी, सबकी शुभ की इच्छा करते हैं, सबके साथ अच्छा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग क्या होते, दूसरों के अच्छा होते देखकर उनको दुख होता है कि दूसरों का अच्छा क्यों हो, मतलब उनको ऐसा लगता है। पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभाषी, दूसरों का दुख सुख देखकर ही जीव को आजकल दुखी सुख मिलता है, और दूसरों को सुखी देखते हैं तो हृदय के अंदर जलन होती है। लेकिन भक्त जो होता है वो दूसरों के सुख की कामना करता है और उसके पास स्वयं जो कुछ होता है उसमें संतुष्ट रहता है। कृष्ण का शरणागत, भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो कृष्ण का शरणागत होता है, लालसा रहित होता है भौतिक वस्तुओं की या किसी भी वस्तु की लालसा नहीं रखता, सरल होता है। सरल मतलब उसके अंदर कोई भी ढोंग नहीं होता है, कोई भी कपट नहीं होता है, वो सरल होता है, स्थिर होता है अपने भक्ति में। आत्मराम, वो आत्मा में संतुष्ट रहता है। नियमित आहार करने वाला, ये नहीं जब जो दिल चाहे बस खाते रहो, ये खाओ वो खाओ, नियमित आहार करने वाला होता है, ज्ञानी होता है। शिष्ट यानी कि बहुत ही अच्छा व्यवहार सबके साथ करने वाला होता है। और निराभिमानी, अभिमान नहीं करता, गंभीर होता है। सहानुभूतिशील, सबके साथ सहानुभूति रखता है, प्रेम करता है। और मैत्री भाव वाला, सबके साथ मित्रता रखने वाला होता है। और उसके बाद है कवि हृदय, कवि हृदय का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है, प्लस बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान की कथाओं को बता सकता है। दक्ष माना एक्सपर्ट होता है, तथा मौन रहने वाला, फिजूल की बातें नहीं करता है। तो भक्त के इन 26 गुणों में से जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवतम की प्रस्तुति, उनके द्वारा दिया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मिक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। तो इतना सुंदर ढंग से उन्होंने भगवान की इन लीलाओं का वर्णन किया है कि आज तक लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत इन भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, और जैसे जैसे हम इन सुखदेव गोस्वामी के बताए हुए बातों को श्रवण करते हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं तो वैसे ही रसमयी है, आनंदमयी है, आस्वादनीय है। लेकिन जिस तरह से भागवत को पका हुआ फल कहा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि पके हुए फल पे जब भी कोई शुक कोई चोंच मार देता है ना कोई तोता, तो वो फल की मिठास और भी कई गुना बढ़ जाती है। उसी तरह से निगम कल्पतरुर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। भगवान की लीलाएं तो रस से भरी हुई हैं, आस्वादनीय हैं, मिठास से भरी हुई, बड़ी मधुर भगवान की मधुर मधुर लीलाएं हैं। लेकिन जब उन लीलाओं को सुखदेव गोस्वामी जैसे कोई बहुत ही मधुर वक्ता हमें बताते हैं, उनके शब्दों के अंदर इतनी मिठास होती है कि वो भगवान की लीलाएं और भी अधिक रसीली हो जाती हैं। और जब हम किसी शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो फिर हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम का समुद्र है वो उछाल मारने लगता है, वो तरंगित हो जाता है वो समुद्र, और कृष्ण प्रेम जो है वो उसकी बाढ़ आने लगती है हृदय में। इसलिए कहा जाता है भागवत पढ़िए भागवत स्थाना। भागवतम को भागवत भक्तों के द्वारा यदि हम श्रवण करते हैं तभी उसका वास्तविक लाभ प्राप्त होता है। तो आज सुखदेव गोस्वामी को शौनक मुनि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी को जब राज परीक्षित ने क्या पूछा उसके बदले में, जब ये उन्होंने ये सब बताया तो किमन्यत पृष्ठवान भूयो, फिर उन्होंने क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो भगवान की कथाओं को इतने मधुर रस से भरपूर करके बता रहे थे, तो उसके बाद उनकी जो वार्ता हुई उसको आगे कहते हैं। एतस्यु श्रुतां विद्वन् सूतनोर् हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतस्यु श्रुतां विद्वन् सूतनोर् हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतस्यु श्रुतां विद्वन् सूतनोर् हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतस्यु श्रुतां विद्वन् सूतनोर् हसि भाषितुम् कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतस्यु श्रुतां विद्वन्, पहले तो वक्ता की क्वालिटी बताई कि उसे कवि होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुंदर ढंग से वर्णन करने का उसके अंदर कला होनी चाहिए, और अब श्रोता की क्वालिटी बता रहे हैं। एतस्यु श्रुतां विद्वन् के श्रोता को सदैव सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, मुझे सुनना है। आज हम देखते हैं जो श्रोतागण कथा सुनने के लिए आते हैं वो केवल शब्दों के अंदर उसके अंदर नहीं बहना चाहते हैं, वो शब्दों के अंदर खोना नहीं चाहते हैं, उसका रसपान नहीं करना चाहते हैं, वो तो समय को देख रहे होते हैं। ये उनकी नजर जो होती है वो ज्यादातर मंदिर में लगी हुई वॉल क्लॉक पे होती है, या फिर बार बार मोबाइल को ऐसे टच करके देखते हैं कि बाकी कितने मिनट तक सुनना है हमें। वास्तव में जब तक हृदय के अंदर सुनने की लालसा उत्पन्न नहीं होगी ना, तब तक हम भागवतम को श्रवण करने का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकते। इसी वे कहते हैं एतस्यु श्रुतां विद्वन्, हे विद्वन, हम तो उसको सुनने के लिए हृदय से उत्सुक हैं। सूतन और हसी भाषित, बस सूत गोस्वामी आप एक काम कीजिए, हमें सुनाते रहिए। सूतन और हम सबों को आप बस एक कृपा कीजिए, अर हसी भाषितुम, बस बताते रहिए, समझाते रहिए, रुकिए मत। कथा हरि कथोर दरका, जब भगवान की कथा हरि कथोर दरका, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में विचार होता है, तो ये कब होता है, जब सताम स्यु सदसी ध्रुवम, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, सताम यानी जो जब दो भक्त आपस में मिलते हैं, सदसी ध्रुवम, तब एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, वो जो बात करते हैं उससे हृदय में भगवान के प्रेम को उत्पन्न, प्रेम जो है वो प्रगाढ़ होने लगता है, प्रेम जो है वो जागृत होने लगता है, क्योंकि भगवान के विषय में बात होने लगती है। और जब दो भक्त भगवान के विषय में बात कर रहे होते हैं, जब वो चर्चा सुन जब वो कोई भी सुनता है तो अवश्य उसका कल्याण होता है। तो कृपा कीजिए सूत गोस्वामी, सूतन और हसी भाषितम, आप बताइए तो सही कि जब सुखदेव गोस्वामी ने इतनी कथा कह दी, फिर परीक्षित महाराज ने उसके बाद क्या पूछा। हम वो सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। हम भगवान के उन भक्तों की वार्ता को सुनने की इच्छा करते हैं। और आप क्योंकि विद्वान हैं, एतश्शुश्रुतो विद्वान, आप विद्वान हैं, आप उन कथाओं को बताने के योग्य हैं। यहाँ पर सूत गोस्वामी की भी क्वालिटी बताई जा रही है कि कोई भी बेवकूफ लोग हैं जो भगवान की कथाओं को नहीं बता सकते, कोई राजनीतिक हो, कोई पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, उससे नहीं, जो वास्तव में विद्वान है। और विद्वान का भगवान सीधा सीधा अर्थ बताते हैं, बहुनाम जन्मनामंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना वही विद्वान होता है, और वही हमें भगवान की कथाओं को अच्छी तरह से बता सकता है। तो किसी भगवान के शुद्ध भक्त को ढूंढ कर उन्हीं से भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। अनुवाद देखिए, हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कही सुनी जानी चाहिए। सताम स्यु सदसी ध्रुवम, जरूर भक्तों की सभा में ऐसी कथा होनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भक्तों को कि हमें तो भगवान के बारे में कथा पता है ना, बस बैठो अपना बैठ के जप करो, बस बात बात नहीं करो। नहीं, भगवान के विषय में जब चर्चा होती है, कथा हरि कथोर दरका, जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श होता है, यहाँ पर यह भागवत हमें प्रमाणित करती है कि भक्तों को आपस में मिलकर भगवान की कथाओं को निश्चित रूप से बोलना चाहिए, कथा करनी चाहिए, भगवान की कथाओं को उदय करना चाहिए, उससे हृदय के अंदर प्रेम विकसित होता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले ही उद्धृत कर चुके हैं कि यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान की सेवा में जोड़ दी जाती हैं तो वे दिव्य बन जाती हैं। उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए, स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए प्रस्तुत किए गए थे, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब चार वेद, छह शास्त्रों और 17 पुराणों का उल्लेख कर लिया था, तो लेकिन स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचरा, स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधु जो थे उनको श्रुति यानी के वेदों पर उनका अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद वेद व्यास जी ने रामायण और महाभारत लिखे। अब रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, ये इतिहास है। ज्यादातर देखा जाए महाभारत में क्या है, पॉलिटिक्स है, युद्ध है, कौरव और पांडवों की आपस में जो मतभेद है वो है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सामान्य वार्तालाप है। लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें भगवान को जोड़ दिया गया है, इसलिए ये वेद कहलाता है। महाभारत पंचम वेद कहलाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को जोड़ दिया गया। तो सामान्य वस्तु में भी यदि भगवान को जोड़ दिया जाता है तो फिर वो दिव्य बन जाती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, संस्तुत किए जाते हैं, वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को पांचवा वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य चार विभाग हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग, वेदांग नहीं मानते हैं, लेकिन महर्षि तथा आचार्यगण इसे पांचवा वेद स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का एक अंश है। और यह अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्णित है। कुछ कम बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता ग्रस्तों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था जो ग्रस्ती था, और भगवान द्वारा किया गया था जो कि स्वयं भी ग्रस्त की भूमिका में थे। यहाँ पर समझने की बात है, शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ग्रस्तियों को गीता नहीं पढ़नी चाहिए, झगड़ा होता है घर में, महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत से घर में जो है ना वो एक दूसरे से अनबन होती है। लेकिन ये वास्तव में ग्रस्तियों के लिए है, क्योंकि ग्रस्तियों को ये सब यदि पढ़ के उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से अपने ग्रस्त धर्म को पालन करना है। तो वास्तव में अर्जुन भी ग्रस्ती थे जिसको श्रीमद् भगवत गीता को उपदेश दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि ग्रस्तियों को डेली श्रीमद् भगवत गीता श्रवण करनी चाहिए, उसी से जीवन का कल्याण होगा। अतएव यद्यपि श्रीमद् भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान की नव शिक्षाओं के लिए है, और श्रीमद् भागवत स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी फिर बता रहे कि जो नव शिक्षा है दिव्य विज्ञान के, जो स्टार्ट के जब भी हम भक्ति में आते हैं ना, तो पहले हमें श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और उसके बाद स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों यानी जब जैसे जैसे ग्रेजुएट हो जाएं और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए ना, तब श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। अतएव महाभारत पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए, पढ़े जानी चाहिए। यहाँ पर बता सताम सु सदसी ध्रुवम जरूर पढ़ने चाहिए भक्तों को। और आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यवसायिक आदमियों द्वारा कहा जाता है, मतलब बस इसको धंधा बना दिया गया है, केवल बिजनेस के तौर पर इन साहित्य को, इन शुद्ध ग्रंथों को पढ़ा जाता है, तो यह इतिहास या महाकाव्य की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। अब उसमें ऐतिहासिक की जाहिर सी बात है बहुत सारी घटनाएं हैं, तो कोई अगर बिजनेस में ना आके इसको पढ़ता है तो फिर दिखने में वो सिर्फ एक संसारी साहित्य है, जैसे संसारी साहित्य होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ऐसा लगता है। इसीलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या शुद्ध भक्तों के समाज में की जानी चाहिए। सताम यहाँ पर शब्द है, सताम स्यो सदसी ध्रुवम, भक्तों की सभा में ऐसी कथाएं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त ही भगवान के प्रयोजन को, भगवान के शब्दों को, भगवान की लीलाओं को अच्छी तरह से बता सकते हैं। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती है, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रस आस्वादन नहीं कर सकते। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंत तो गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है, वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं, वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतित आत्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। चूंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के आध्यात्मिकरण का यही उपाय है। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न छोड़ दिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाएं। भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई भी क्रियाशीलता नहीं होती है, वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके ना कोई नाम है ना रूप है, इस तरह की कुप्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणित कर दिया है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वे संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे श्री भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। श्रीमद् भागवतम पांडवों के इतिहास यानी आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त उनसे प्रारंभ होता है। अगर श्रीमद् भागवतम को देखा जाए तो कहां से स्टार्ट होता है? पांडवों के इतिहास से। तो भी यह परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है और इसमें परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परम हंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलग करके पीने की कला जानते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी भक्तों को हंस से बता रहे हैं कि जिस तरह हंस दूध में से दूध और पानी मिला के रख देते हैं तो खाली दूध पी जाता है, उसी तरह से भगवान के भक्त भी भौतिक वस्तुओं को बाहर निकाल देते हैं और जो जो बातें से भगवान के प्रति हमारा प्रेम और भी उत्कृष्ट होता है, जागृत होता है, उन्हीं को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर एक मुख्य बात श्री प्रभुपाद जी ने बताई है कि जो लोग होते हैं उनमें इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य तथा कहानियों उपन्यास वगैरह को पढ़ने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है और अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ कैसे जोड़ना चाहिए, भक्तों को कला आनी चाहिए जिससे वे सभी भक्तों द्वारा आस्वादनीय कथाएं बन जाए। और क्योंकि भगवान तो निर्विशेष नहीं है लेकिन फिर भी लोग भगवान के बारे में बताते हैं वो निर्विशेष हैं, वो केवल क्रियाशील नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, उनका कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, इसका बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है ना, तो इसके कारण लोगों के अंदर ईश्वर विहीन श्रद्धा विहीन असुरों की भावना उत्पन्न हो गई है। तो जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से वो दूर हटे जा रहे हैं उतना ही वो नरक के करीब जाते रहे, उनका नरक का जो मार्ग है वो आगे आ रहा है। तो नीचे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताया है कि 50 वर्ष पूर्व तक यानी पिछले 50 वर्षों से आगे अगर हम देखते हैं तो सभी भारतीयों की सामाजिक संरचना इस प्रकार से सुव्यवस्थित बनाई गई थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा हुआ नहीं था। वो पढ़ते थे, जो भी कहानियां वगैरह पढ़ते थे ना, अब ये रुचि है लोगों की, लेकिन वो वही कहानियां पढ़ते थे जो कि भगवान के साथ कार्यकलापों से जुड़ी होती। वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो कि भगवान के साथ संबंधित ना हो। हम भी यदि देखें अपने बचपन में कभी भी लीलाएं होती थी, जो भी नाटक होते थे वो क्या होते थे? भगवान की कथाओं से जुड़े हुए होते थे, है ना, भगवान के कार्यकलापों से जुड़ी हुई कथाएं देखते थे। तो फिर क्या होता था, वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो। वो सारे कार्यकलाप वो करते थे जिससे भगवान की स्मृति याद आए, ना ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो तीर्थ स्थल ना हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हुआ हो। इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण महाभारत गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था। आज हम देखते हैं छोटे बच्चों को पता ही नहीं है राम क्या, सीता क्या, लक्ष्मण क्या, क्या कैकेयी ने क्यों उसको भेजा था, लेकिन पहले जमाने में सबको पता होता था क्योंकि डेली जो उनका इंटरटेनमेंट होता था ना, दादी माँ जो होती थी वो कथाएं सुनाती थी, रामायण की कथाएं सुनाती थी, महाभारत की कथाएं सुनाती थी और इस तरह से सब मिलते थे, सबको ये सारी चीजें पता ही होती थी। तो देहात में जो बेवकूफ लोग मतलब जो एजुकेटेड नहीं होते थे वो भी रहते थे तो भी वो उन सब चीजों को जानते थे। यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकरों सूकरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। बस अभी उनको ऐसा लगता है कि खाली अभी बड़े हो जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी बन जाते हैं, लेकिन उनको धर्म के विषय में कुछ पता नहीं होता। उनके ख्याल में केवल धन एकत्रित करना और अपने शरीर के लिए सुविधाएं प्राप्त करना ही जीवन का मतलब है, और शास्त्रों के बारे में कुछ पता नहीं होता, भगवान के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम जैसे जैसे अपने आप को एडवांस समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हमारा पतन ज्यादा हो रहा है, नरक का दरवाजा खुल रहा है। तो जितना ज्यादा संभव है हमें भगवान की कथाओं के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे भक्तों के साथ जुड़ना चाहिए जो भगवान के साथ संबंधित करें। भगवान की चर्चा जहां पर हो रही है वहीं पर उस चर्चा को श्रवण करने से ही जीव का कल्याण होगा। आगे सोनक मुनि सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी से कहते हैं, सवै भागवतो राजा पांडवीयो महारथः बाल क्रीडन्न कै क्रीडन् कृष्ण क्रीडा यदा य आददे। सवै भागवतो राजा पांडवीयो महारथः बाल क्रीडन्न कै क्रीडन् कृष्ण क्रीडां य आददे। सवै भागवतो राजा पांडवीयो महारथः बाल क्रीडन के क्रीडन् कृष्ण क्रीडा य आददे। सवै भागवतो राजा, वह निश्चित रूप से भागवत महान भगवान का महान भक्त राजा परीक्षित पांडवे यह महारथा, जो कि पांडवों का पौत्र है, वो महान योद्धा है और वो इतना ही भगवान का शुद्ध भक्त था कि बाल क्रीडन नक है, जब वो छोटा था बाल अवस्था में जब वो क्रीडन यानी खिलौनों के साथ खेलता था ना, तो भी कैसा कैसा खेलता था, क्रीडन कृष्ण क्रीड़ा यह आदत है। वो खेल के समय में भगवान की लीलाओं के बारे में ही खेलता था। कृष्ण क्रीडन यानी कि कृष्ण की लीलाओं के कार्यकलापों के को ही स्वीकार करता था। इतना यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की महिमा का बखान किया जा रहा है कि वो पैदाइशी भगवान के भक्त थे। एक तो उनको जब वो माता के गर्भ में थे तभी उनको भगवान के दर्शन हुए। इतना उनका बड़ा सौभाग्य कि जीव पूरी जिंदगी यदि तपस्या करता है तब भी उसको भगवान के दर्शन नहीं होते, और वो अभी तक उन्होंने जन्म भी नहीं लिया, उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया माता के गर्भ में, और जीवन भर उसी छवि को ही वो ढूंढते रहते थे, परीक्षित करते थे। जैसे बच्चे पैदा हुए थे ना, वो देखते थे हर किसी को गौर से, ध्यान से देखते थे कि ये वही तो नहीं है जिसे मैंने अंदर देखा था। मतलब उनकी आंखें सदैव तरस रही थी भगवान के दर्शन करने के लिए, इसीलिए उनका नाम भी परीक्षित रखा गया। तो वो जब खेलते थे तो भी वो भगवान के कार्यकला, बचपन से ही भगवान से इतने ज्यादा प्रेम करते थे कि सदैव भगवान के ही विषय में उनका वो सोचते थे, खेलते थे। अनुवाद देखिए, पांडवों के पुत्र महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 6.42 में कहा गया है, अप्य पुण्य प्रतम लोको ओषित्वम शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमतम गेहे योगो व्रष्टो विजायते। कि यदि कोई भक्ति करते करते उसका पतन भी हो जाए, उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो फिर वो बहुत बहुत समय तक पुण्य लोकों में जाएगा, उसके बाद शुचि नाम श्रीमताम गे है, बहुत ही पवित्र ब्राह्मणों के घर में, क्षत्रियों के घर में, धनवान परिवार में उसका जन्म होगा। उसी के विषय में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योगाभ्यास करने में विफल रहता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वर्णिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु महाराज परीक्षित तो उनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे। अतएव उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया था, अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा से भली भांति परिचित होने का सु अवसर प्राप्त हुआ था। सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवार, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य उस समय होता है जब वो किसी भक्त के घर में पैदा हो। कृष्ण भक्त के घर में पैदा होना ना बहुत बहुत महान बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि बचपन से ही जीव को भगवान के दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान की सेवा का अवसर मिलता रहता है। तो महाराज परीक्षित तो जब छोटे पैदा हुए थे तभी वो भगवान के दर्शन कर सकते थे, भगवान उनके यहाँ पर आते थे, उनके सारे पांडव जो थे वो सब भगवान के शुद्ध भक्त थे। और यहाँ पर आगे शिला प्रभुपाद जी अपने विषय में बता रहे हैं कि जिस तरह महाराज परीक्षित सौभाग्यवान थे, उसी तरह से वो भी, श्रील प्रभुपाद जी के भी ना इतना बड़ा सौभाग्य था कि वो भी बचपन से भगवान के साथ जुड़े हुए थे और भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल से खेलों में भी ऐसे देव पूजन का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया था। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे, चाहे वह रथ यात्रा हो या ढोल यात्रा, और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरित करने में वे खुले दिल से धन भी व्यय करते थे। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा था। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। अभी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान ने क्या कहा कि जिनकी भक्ति थोड़ी अधूरी रह गई है वो ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होते हैं या क्षत्रियों के कुल में या फिर धनवानों के कुल में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो भाग्यवान होते हैं वो तो भगवान के भक्तों के कुल में उत्पन्न होते हैं। जैसे परीक्षित महाराज भगवान के भक्तों के कुल में उत्पन्न हुए, श्रील प्रभुपाद जी भगवान भगवत भक्तों के कुल में उत्पन्न हुए, भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो ऐसे भक्तों के घर में उत्पन्न होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त बन गई थी, महान भक्तन थी। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक सा होता है, क्योंकि भगवान से भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा। अब जाहिर सी बात है, वो पौत्र थे अर्जुन के, और युधिष्ठिर महाराज और जितने भी पांडव थे उनके कुल में उत्पन्न हुए थे, तो उन्होंने अवश्य ही भगवान के वृंदावन की लीलाओं के विषय में सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। साफ साफ लिखा हुआ है कि बाल क्रीडन न कह क्रीडन कृष्ण लीलाया आदये, कि बचपन में वो खेलते ही वही लीलाएं थे जो भगवान खेलते थे। तो श्रीधर स्वामी जी के अनुसार महाराजा परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुसरण करते थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी श्रीला जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुसरण किया होगा और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि बाल्यकाल से ही वो भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिनका अर्थ है जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हों। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंततोगत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है, अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि हैं। अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी के पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा से के इतिहास में अद्वितीय है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दो प्रकार के भक्तों को बताते हैं कि एक कुछ भक्त तो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, वो तो पैदाइशी भक्त होते हैं, आते हैं भगवान की लीलाओं की सहायता करने के लिए या फिर भगवान की लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, भगवान की शक्तियां विश अवतार हैं, भगवान की कथाओं को भगवान की लीलाओं को बखान करने के लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए, और महाराजा परीक्षित हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भले ही वो नित्य सिद्ध नहीं होते हैं, लेकिन यदि उनका किसी शुद्ध भक्त के साथ सम्मिलन हो जाता है तो वो साधन सिद्ध हो जाते हैं और इस तरह से वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जिसके यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है नारद मुनि का, वो दासी के पुत्र थे, बचपन से भक्त नहीं थे, उनको भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता था, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से वो अद्वितीय भक्त बन गए। ऐसे भक्त बन गए जो बड़े बड़े भक्तों के गुरु हो गए। यहाँ तक कि जितने भी इतिहास में बड़े बड़े भक्त हैं वो सब नारद मुनि के ही शिष्य हैं। आगे शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं, वैयासकिश्च भगवन् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सतां सुर्हि समागमे। वैयासकिश्च भगवन् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोद्वारा सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकिश्च भगवान् वासुदेव परायणः उरुगाय गुणोदारा सतां स्युर्हि समागमे। वैयासकिश्च भगवान्, एक तो पांडवों के पौत्र परीक्षित महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं, जो बचपन से ही भगवान के भक्त थे और खेल 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 में भी भगवान की लीलाएं करते थे, और उनकी यहाँ पर उनका साथ हो गया किससे? वैयासकी यानी वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के साथ, जो साक्षात दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थे। भगवान बताया गया उनको कि भगवान की जैसे गुण रखते थे वे। और वासुदेव परायण, जब भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवान जैसे शुद्ध गुण उसके अंदर, देवताओं जैसे शुद्ध गुण आते हैं। वो वासुदेव परायण थे, भगवान कृष्ण पर निर्भर थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। अब एक शुद्ध भक्त का जब दूसरे शुद्ध भक्त के साथ मिलन हो गया तो क्या होगा? उरुगाय गुणोदारा। उरुगाय, उरुगाय मतलब महान दार्शनिकों द्वारा महिमान्वित भगवान कृष्ण का। उरु का मतलब होता है सबसे जो ऊंचा है, यानी जो भगवान है उसी का ही गायन हुआ होगा, है ना, उनके गुणों द्वारा, यानी महान भगवान के जो गुण हैं
उन्हीं की चर्चा होगी। जब दो शुद्ध भक्तों का मिलन हुआ तो फिर कृष्ण की चर्चा निश्चित रूप से होगी, है ना। सताम स्यूर ही का मतलब होता है अवश्य ही, स्यू का मतलब होता है अवश्य निश्चय ही। जब समागमे, जब इन दो भक्तों का मिलन हुआ है तो कृष्ण की कथा हुई होगी। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप इन दो महान भक्तों के बीच में जो वार्तालाप चला है, बस उन्हें हमें सुनाते रहिए। अनुवाद देखिए, व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी दिव्य ज्ञान से पूर्ण भी थे और वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। अतएव भगवान कृष्ण विषयक चर्चाएं अवश्य चलती रही होंगी, क्योंकि बड़े बड़े दार्शनिकों द्वारा तथा महान भक्तों की सभा में कृष्ण के गुणों की का बखान होता रहता है। तो सताम स्यूर ही समागमे, जब भगवान के बड़े बड़े भक्त आपस में मिलते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक मिलते हैं, तो क्या काम करते हैं, कृष्ण के गुणों का बखान करते हैं। तो जब आपको दिखे कि दो लोग बैठे हुए हैं और भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही छोटे लोग हों, लेकिन भले इतने ज्यादा एजुकेटेड ना हो, इतने ज्यादा दक्ष ना हो, लेकिन समझ जाओ कि शास्त्र ने उन्हें ही महान कहा है। और बाकी दो बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हो, बड़े बड़े साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं, वो भले कितने ही बड़े बड़े फिलोसफियां झाड़ते रहे, उनका कोई महत्व नहीं है। ये भौतिक वस्तुओं के बारे में जो चर्चा होती है ना, उसको तो शास्त्र में कौवों का तीर्थ कहा गया है। भक्तों को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। जब शुद्ध भक्त आपस में मिलते हैं, यहाँ साफ साफ बताया गया कि वो जो उरुद गायनों द्वारा सताम स्यूर ही समागमे, जब शुद्ध भक्त आपस में मिलते हैं, जब वास्तव में बड़े बड़े दार्शनिक आपस में मिलते हैं, तो कृष्ण के गुणों का ही बखान करते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में सताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सताम का अर्थ है शुद्ध भक्त, जिसे भगवान की सेवा करने का के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। अब शुद्ध भक्त की भी यहाँ पर व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब होता है उसकी एक ही इच्छा हो कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। भगवान की सेवा के अतिरिक्त और उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे भक्तों की संगति में ही भगवान कृष्ण के दिव्य यश का सही सही वर्णन हो सकता है। जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है ना, तो वही भगवान के दिव्य यश के विषय में सही तरह से बता सकते हैं। भगवान द्वारा कहा गया है कि उनकी कथाएं आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं, और यदि कोई एक बार भी सताम की संगति में भगवान के विषय में श्रवण करता है, तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिल जाता है। ये भगवान ने कह दिया है कि जो भगवान की कथाएं हैं, वो आध्यात्मिक महत्व से युक्त होती हैं। भगवान की कथाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है। वो कथा श्रवण करने से ही भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, सताम की संगति होनी चाहिए। शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे तो अवश्य ही उसे इस महान शक्ति का आभास मिलता है, और इसमें स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, महाराज परीक्षित जन्म से ही भगवान के भक्त थे, और उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी भी थे। वे दोनों समान स्तर पर थे। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा परीक्षित राजाओं राजसी सुविधाओं के अभ्यस्त थे, जबकि सुखदेव गोस्वामी एक आदर्श महान त्यागी थे। यहाँ तक कि वे शरीर पर वस्त्र भी धारण नहीं करते थे। ऊपर ऊपर से महाराजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में विरोधाभास दिख सकता है, लेकिन मूलतः दोनों ही भगवान के अनन्य शुद्ध भक्त थे। जब ऐसे भक्त इकट्ठे जुटते हैं, तो उनके पास भगवान की महिमा चर्चा करने या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं होता है। श्रीमद भगवत गीता में भी जब भगवान तथा उनके भक्त अर्जुन के बीच वार्ता हुई तो भक्ति योग के अतिरिक्त और कोई दूसरी चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी इस पर संसारी विद्वान अपने अपने तरीके से सोच सकते हैं। श्री राजीव गोस्वामी के मतानुसार वैयासखी शब्द का के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से एक कोटि के थे। यहाँ पर बताया वैयासखी च भगवान, जैसे पहले परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया और च का मतलब होता है बी, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एंड सुखदेव गोस्वामी भी भगवान वासुदेव परायण भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि श्रीजीव गोस्वामी के मतानुसार वैयासखी शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग यह बताता है कि सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ही पहले से ही एक कोटि के थे। यद्यपि उनमें से एक गुरु की भूमिका निभा रहे थे और दूसरा शिष्य की, चूंकि भगवान कृष्ण ही कथाओं के केंद्र हैं, अतएव वासुदेव परायण शब्द वासुदेव के भक्त को सामान्य लक्ष्य के तौर पर सूचित करता है। यद्यपि वहां पर अन्य अनेक लोग एकत्रित थे जहां पर महाराजा परीक्षित उपवास कर रहे थे, लेकिन सहज निष्कर्ष यह निकलता है कि वहां पर कृष्ण की महिमा गायन के अतिरिक्त अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रमुख वक्ता सुखदेव गोस्वामी थे और प्रमुख श्रोता महाराजा परीक्षित थे। अतएव भगवान के दो प्रमुख भक्तों के बीच कहे तथा सुने जाने के कारण श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण के महिमा गायन के ही निमित्त है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.10 में, मच्चित्ता मत्कतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्जुन, मेरे भक्तों को पहचानना हो ना तो इससे पहचानना कि जब वो आपस में बैठेंगे तो केवल मेरे बारे में बात करेंगे, बोधयस्त परस्परम, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे मेरे बारे में, उनका चित्त मुझ में लगा होगा, मत परायण, वो मेरे बारे में ही सदैव सोचते होंगे और इसी से उनको आनंद आता है। वो ये नहीं सोचते भगवान के भक्त कि कथा खत्म होगी तो कुछ और करेंगे, उनको बस ऐसा लग रहा है कि कथा चलती रहनी चाहिए, भगवान के विषय में श्रवण चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पर शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं, परम भक्त जो कि बचपन से ही भगवान के शुद्ध भक्त हैं सुखदेव परीक्षित महाराज, उनका जब परम विद्वान कवि महाभागवत सुखदेव गोस्वामी के साथ मिलन हुआ है, जब चर्चा हो रही है, अवश्य वो हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने वाली है। तो कृपया आप उस चर्चा के विषय में हमें बताइए, हम सुनने के बहुत इच्छुक हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।